ये किया था ब्रिटिशर्स ने। अच्छा फिर ब्रिटिशर्स ने दुनिया पे रूल किया, उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है और पावर ट्रांसफर होती है, तो बर्तानिया से पावर ट्रांसफर हुई थी उस वक्त के अमेरिका के प्रेसिडेंट एंड विंस्टन चर्चिल जो थे बहरा ओकियनूस में जहाज में इनकी मुलाकात हुई थी। आज बल्कि वो करामतुल्लाह गौरी साहब जो फरमा रहे थे कि उस वक्त के प्रेसिडेंट और जो बादशाह अब्दुल अजीज था उनकी मुलाकात भी समंदर में ही हुई थी। और बल्कि मुझे पास एक और इन्फॉर्मेशन जो आई जो एमबीएस है कहते हैं कि उनकी जिंदगी को रिस्क है अपनी सिक्योरिटी की खातर वो भी पानी में ही शायद अपना ज्यादा वक्त गुजारते हैं ताकि हर तरफ से वो महफूज रहें। एनीवेज कहां से मैं कहां निकल गई, सोच का सफर तो कहां से कहां हो जाता है ना। हम जन्नत भी देख आते हैं, हम पाकिस्तान भी देख आते हैं, मैं हिंदुस्तान भी देखाया करती होती, मैंने पूरी दुनिया ट्रेवल कर ली है सोच के सफर के साथ। तो आज की जो एक मैंने इम्पोर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करनी है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का हरीफ था जर्मनी भी, बहुत शिकस्त मिली, बहुत सा हिस्सा जर्मनी का लूज भी हुआ, बहुत सा हिस्सा उसने गंवाया भी जर्मनी। इसके अलावा इनके अगेंस्ट था चाइना, जापान। ठीक, आज जापान इनका इत्तेहादी है, बल्कि भी इनका जो B-52 बॉम्बर है 63 साल इसकी उम्र है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इस्तेमाल हुआ था, उसने जो 33 आवर्स का जर्नी किया है जस्ट अपने जो उनके साथी हैं या इत्तेहादी हैं उनको रियलाइज कराने के लिए कि यस वी आर देयर, जो ब्रिक्स के मेंबर हैं और जो इनके इत्तेहादी हैं नेटो के जो लोग हैं कि वी आर देयर, हमारी एयर फ्यूलिंग होगी, एयर असला भरेगा तो वी आर टूगेदर। अब इन्होंने देखिए, मैंने कल परसों भी आपके साथ जिक्र किया था कि अक्सर जब फिल्में बनती हैं तो फिल्में ऐसी बनती हैं जो कल कलां की हकीकत होती हैं। स्टार वॉर्स का आप देख लें, बहुत सारी चीजें आप देखते थे, मैंने इसका बल्कि परसों भी जिक्र किया था कि जहाज जा रहा है, इनकी स्पेसशिप जा रही है और वहीं से उसकी फ्यूलिंग होती है, वहीं पर चीजों को भरा जाता है, उसमें असला वगैरह भी भरा जाता है, एक ट्रैवल भी किया जाता है वहां से दूसरी स्टारशिप तक भी ट्रैवल करना, सारी की सारी साइंस फिक्शन। अभी इन्होंने एक फिल्म बनाई है और इस फिल्म को इन्होंने मेरा ख्याल 15 करोड़ डॉलर की लागत से ये फिल्म तैयार की है। ये वो दो जो मुखालिफ ताकतें थी ना, एक जमाने में वो मुखालिफ ताकतें एक दूसरे के खिलाफ लड़ा करती थी, अब इन्होंने उसको पोर्ट्रे किया है इस नई फिल्म में, जो फिल्म ठीक ठाक लागत से तैयार हुई है। कहते हैं इस फिल्म में गो की इतनी जान नहीं, करेगी कारोबार, 15 करोड़ के बजट से ये फिल्म तैयार हुई, अब तक 40 करोड़ का इसने कारोबार किया है और इंटरनेशनली इस फिल्म को रिलीज किया है। गोडजिला कॉन्ग इसका नाम है। ये दो करेक्टर्स थे जो पहले एक दूसरे के दुश्मन थे, वेरी स्ट्रांग पावर,
किंग कॉन्ग गॉडजिला,
एग्जैक्टली। अब ये दोनों ताकतें इकट्ठी इन्होंने दिखाई हैं कि टुगेदर दे आर फाइटिंग। तो मैं इसको रियलाइज कर रही थी कि ये दो ताकतें, आपको पता चाइना वॉज, जापान वॉज वेरी स्ट्रांग वंस अपॉन अ टाइम, और उसके बाद फिर जब जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हार मानता है तो उसके बाद इतना अरसा तो उसकी फौज भी ना बन सकी, फौज भी ना फिर उसकी रही। ठीक, एनीवेज ये आलमी सिनेमा के मरकज पे वो कहानियां हैं। ये इसकी फिफ्थ सीरीज है, ये बाकायदा एक सीरीज है जिसकी पांचवी सीरीज है, और इस सीरीज में ये दो करेक्टर्स को यकजा हुआ दिखाया। आमिर, मैंने आपको ये मेरा ख्याल भेजा भी था, ये पाकिस्तान समेत दुनिया में रिलीज हुई है और पाकिस्तान में वही बात है कि वो जो सब टाइटल और वो जैसे तुगरुल गाजी भी नहीं आ गया था कि वो बात अपनी जुबान में करते हैं मगर हमें उर्दू समझ आ रही होती है, उस तरह से दो हैकल करेक्टर्स हैं जिनको मुझे याद है हमारे जमाने में जब हम स्टूडेंट होते थे यति आई थी, याद है यति, तो एग्जॉसिस्ट, एक एग्जॉसिस्ट आई थी जिसको देखने के लिए गए थे और जाने से
बड़ी खतरनाक,
बड़ी खतरनाक,
बहुत खतरनाक
एग्जॉसिस्ट, इतनी खतरनाक मूवी थी। तो बहरहाल वही दो हैकल किरदारों पर मुश्तमिल ये फिल्म है, अंग्रेजी में बनी है, हॉलीवुड की फिल्म है और इसको ऑस्ट्रेलिया में भी पिक्चराइज किया गया और भी एक दो ममालिक में इसको पिक्चराइज किया है। अब इसका वर्जन जो है उन्होंने चेंज किया है कि जिस जिस मुल्क में ये रिलीज की गई है इसकी डबिंग उसी में की गई है। अगेन मैंने कहा मॉन्स्टर्स फिल्मों में ये फिफ्थ सीरीज का पांचवा हिस्सा है, मगर इसमें वो जो ऑपोजिट करेक्टर्स थे उनको इकट्ठा इलहाक हुआ हुआ उनमें दिखाया है। आज तक वो कहते हैं कि गोजिला एक ये जापान का करेक्टर है, बुनियादी तौर पे जापान का करेक्टर है। इस पर 38 फिल्में बनी है, जबकि किंग कॉन्ग सीरीज में ऑल टूगेदर अब तक 13 बनी है, मगर अब इन दोनों को जब इकट्ठा है तो देखिए ये फिल्म क्या रिजल्ट देती है। अभी तक इसने जो कारोबार किया तकरीबन 40 करोड़ का इसने कारोबार किया है, 15 करोड़ डॉलर से ये तैयार की गई है, 40 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, अभी और बिजनेस करेगी। अभी दो हफ्ते पहले इसको रिलीज की पाकिस्तान ने, इसको ईद पे रिलीज किया गया है। बहरहाल इसमें जापान और अमेरिका दोनों, चीन जापान और अमेरिका दोनों शामिल है। इट्स बिजनेस इज बिजनेस एंड कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी। इसको हॉलीवुड में पिक्चराइज किया गया, इसके अलावा इसको ऑस्ट्रेलिया में भी पिक्चराइज किया, इटली और फ्रांस ब्राजील के ममालिक भी इसमें शामिल हैं। स्क्रिप्ट इसका बस सो है, मैंने आमिर को भेजा था इसका ट्रेलर एंड आई थॉट आई आल शो यू, बट लेट्स सी इंशाल्लाह, आई थिंक आमिर इज वर्किंग ऑन इट। बहरहाल वो कहते हैं इस फिल्म में अदाकारी का तनासिब काफी कम था, दबाव वाले मनाजिर में कॉमेडी का इम्तजाज पेश करने की कोशिश भी की गई है, अदाकार ज्यादा कामयाब दिखाई बता इसमें नहीं देते, और मारूफ अमेरिकन कॉमेडियन जो ब्रायन टेरी हैं वो भी इसमें रवायती और तरीके से अपने शामिल हैं। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट इन दिस। ये तो एक मैंने आपको करना था, बताना था कि वो जो ताकतें एक जमाने में एक दूसरे के अगेंस्ट होती थी, अब वो एक दूसरे के साथ खड़ी हैं, और ये मुझे और आपको फिल्म की दुनिया में नजर आता है, मगर हकीकत की दुनिया भी यही है कि पार्टनर्स चेंज हुआ करते हैं। अब मुझे ये इस चीज का किसती एक और भी ख्याल आया कि बहुत से लोग जो पाकिस्तान के तजिया निगार हैं वो ईरान की जो सूरत हाल पेश करते हैं कि ईरान एज ए टाउट काम कर रहा है, हालांकि देयर वाज अ टाइम 79 तक ईरान और इसराइल के अच्छे तल्लुक थे, फिर इमाम खमीनी आते हैं और उसके बाद हालात बदलना शुरू करते हैं, ईरान ने तस्लीम भी नहीं किया, ईरान ने ठीक ठाक कीमत चुकाई है। दिस इज माई ओपिनियन, आपका इससे मुत्तफिक होना कोई जरूरी नहीं है। एनीवेज ये तो थी एक सूरत हाल, और ईरान ने जो अपनी ये वाली एफर्ट की है कि मैंने आपको उसकी हेडलाइन आज दिखाई थी जिसमें बहुत खूबसूरत ये बात है, और उन्होंने एम्फसाइज किया है कि गजा को सेव करने के लिए ऑल मुस्लिम कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट दे मस्ट गेट टुगेदर। हम अपने जो हमारे अकीदे के एतराजात हैं या हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको पीछे डालते हुए एक चीज को हमें लेके चलना चाहिए, कोट एंड कोट्स में एम्फसाइज्ड, ईरान का जो ये फतवा है इसने एम्फसाइज किया है द नीड फॉर द इस्लामिक यूनिटी बिटवीन द शियट्स एंड द सुन्नीस इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द इसराइल एंड प्रेजेंटिंग द पैलेस्टाइन्स एज फ्लो टू शिया। ठीक, ये तो थी एक सूरत हाल ईरान से मुतल्लिक। एक और चीज मेरे नोटिस में गुजरी जो मैं आपको, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, बिजली की कीमत कम हुई है, मगर आप फिक्र ना करें बिजली की कीमत दोबारा जब बढ़ेगी तो ज्यादा बढ़ के आपके सामने आएगी, चिंता ना कीजिएगा। मैं एक दफा फिर से बताना चाहती हूं कि जनाब बदर मनीर चौधरी ने ये जो प्रोग्राम करवा रहे हैं दैट इज 25 मई, 25 मई इसका टाइम है, 25 मई को लाइव आपके सामने पेश होंगे जनाब अनवर मकसूद साहब। इस प्रोग्राम को देखने के लिए आप अपनी टिकट्स बुक करा लीजिएगा, ऐसा मत हो कि फिर अब फिर मैं ये कहूंगी अब बचता है क्या हवा जब चिड़ियां चुग गई खेत, और फिर दो तंसर उन्होंने वो अपनी आम बातचीत में तंजो मजाह में वो उन फैक्ट्स को उजागर करते हैं जो पाकिस्तान की हकीकतें हैं, मगर हम रियलाइज नहीं कर रहे। वी आर वेरी मच डिवाइडेड माजिद भाई, मेरा तो सिर्फ एक ही कंसर्न है कि वी आर वेरी मच डिवाइडेड। एनीवेज आईटीएन की प्रोडक्ट्स पे भी आप जरूर तवज्जो दीजिएगा, तमाम ग्रोसरी स्टोर पर मौजूद हैं, मगर अगर आप वॉलमार्ट पे जाते हैं से यू गो टू मेट्रो तो वहां पर भी इनकी दालें जो भी दाल आपने लेनी है, चावल वगैरह यहां मौजूद हैं, मीनार की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, हमदर्द की प्रोडक्ट्स हैं, इसमें इनके फ्रोजन फूड्स भी हैं जिसमें पराठाज वगैरह शामिल है, जिसमें रोल्स वगैरह शामिल हैं। तो आईटीएन की प्रोडक्ट्स ये शान के नाम से, देसी के नाम से, हमदर्द के नाम से, कोलसन के नाम से और मीनार के नाम से, پنج دریا کے نام سے، ڈائمنڈ کے نام سے ان کی پروڈکٹس ہیں. آپ ان کی ویب سائٹ کو دیکھیے اور گریٹ ویرائٹی www.itnfoodcorp.com کارپوریشن سے کارپ آ گیا. ٹھیک. اچھا میں نے آج ایک اور کیس آیا ڈونلڈ ٹرمپ کا. معاملہ بڑا کمال کا چل رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا وکیل اتنا کمال کا ہے. اس نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نا کورٹ میں سے باہر کورٹ روم سے باہر نکل کے ساری باتیں لوگوں کو بتا دیتے ہیں. ان کو $3,000 اور فائن کرو. ایک اور چیز جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل یہ کہا ہے سب وچ ہنٹ اور امریکہ کی تاریخ میں کبھی وہ نہیں ہوا جو اس وقت ہو رہا ہے. مگر انہوں نے کہا مجھے بڑا فخر ہے کہ میں عدالت میں پیش ہو رہا ہوں. ظاہر ہے کچھ ادارے جو ہیں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، جی فلانا ادارہ جو ہے وہ بکا ہوا ہے، فلانا ادارہ بکا ہوا. آپ دیکھیے سی این این، آپ کو یاد ہے جب الیکشن ہو گیا تھا نا، جب جو بائیڈن آ گئے تھے، تو اس کے بعد سی این این نے اپنی پالیسی کو تبدیل کرنے، آپ کو یاد ہے ایک ڈان لیمن ہوا کرتے تھے، ان کو بھی فائر کر دیا تھا. تو چار پانچ لوگ تھے جن کو انہوں نے فائر کیا تھا اور بڑے اچھے اینکرز تھے ان کے، بیکاز دے تھاٹ کہ ہمارا ٹو مچ جھکا ہوا ہے ٹوڈز ڈیموکریٹس، تو ہم نیوٹرل ہوں گے. بٹ دے آر ناٹ نیوٹرل ایون ٹوڈے، دے آر ناٹ. اینڈ دس از گریٹ میڈیا جو کہ پوری دنیا کی برین واشنگ کے لیے. ہاں کرس کومو ہوا کرتے تھے، کرس کومو کو بھی فائر کر دیا تھا. کرس کومو کے بھائی تھے نا جو گورنر تھے، جو گورنر نیو یارک تھے، مگر وہ تو ایک آئی تھی، ایک جینوئن ریزن آیا تھا کہ انہوں نے کیا. مگر سی این این نے کچھ اپنے ہوسٹ کو فائر کیا تھا جس میں ڈان لیمن، اور ڈان لیمن بیچارہ پھر ایک دفعہ ایلان مسک کا انٹرویو لیتے دیتے پھر پھنس گیا. اینڈ آئی واز سرپرائز ہی کیم ٹو سی این این، سی این این نے اس کا انٹرویو کیا تھا، تو میں نے کہا اس کو تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا وہاں پہ. مگر دس از واٹ دا بزنس از، کہ بزنس میں ہم انموسٹیز، دشمنیوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھا کرتے ہوتے. آپ کو یاد ہوگا عراق میں، عراق کی ابو غریب جیل میں جو لوگ بند تھے، آج ان کا فیصلہ بھی ہے، اور قیدیوں اور ان کی حفاظت پر معمور امریکی فوجیوں کی مسکراتے ہوئے تصاویر جاری کی گئی تھی. امریکی عدالت میں اگلے ہفتے سے، نیکسٹ ویک سے یہ کیس کی ہوگی. قید میں زندہ بچ جانے والے تین قیدیوں کا مقدمہ اس فوجی کانٹریکٹر کے خلاف سنا جائے گا جسے وہ اپنے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. جو اور آپ امیجن کیجئے گا کہ استغفار، بہت برا سلوک کیا گیا. یہ جو قیدی ہیں ان کی نمائندگی کرنے والے مرکز برائے آئینی حقوق کے وکیل، انہوں نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہوگا کہ ابو غریب کے زندہ بچ جانے والے اپنے تشدد کے دعوے امریکی جیوری کے سامنے پیش کر سکیں گے. اگین اٹ ول بی اے کلوز ڈور ہوگا، اور میرا خیال ہے جبر لینے کے بعد لوگ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس جبر کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں. ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق سول مقدمے میں کانٹریکٹر کمپنی سی آئی نے کسی بھی غلط کام سے انکار کیا. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. اب یہ تو جب عدالت میں پروف ہوگا تو پھر دیکھتے ہیں. ابو غریب جیل میں بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا. اینی ویز، ایک گیت کی طرف آپ کو لے کر کے جانا چاہتی ہوں. فاخر کیا تو آپ کو بتائیے، فاخر پاکستان کا. اب یہ گانا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گانا سننے والا نہیں ہے، کیونکہ میں تو کہتی ہوں کہ میوزک، میرا دل دھڑکتا ہے، دیٹ از آلسو میوزیکل. ہوا چلتی ہے، پانی کا بہنا، پتوں کے بیچ میں سے ہوا کا نکلنا، صبح کا، ندی کا شور، ہر چیز میں آپ کو میوزک محسوس آتا ہے.
اور جن لوگوں کا ہارٹ پیشنٹس ہیں، وہ ان کو جب وہ کیا جاتا ہے نا، جو عورتوں کی پریگنسی کے لیے کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں
ان کی، جو بھی ہاں کرتے ہیں، بالکل
چیک کرتے ہیں نا، اس کی ان کی دھڑکنیں
ای سی جی جب کی جاتی ہے
تو وہ دھڑکنیں جب چیک کرتے ہیں تو وہ
آپ کو ہر بار عورتوں کی پریگنسی یاد رہتی ہے، ای سی جی عورتوں کی نہیں کی جاتی.
نہیں وہ
جب یہ ای سی جی کرتے ہیں نا تو وہ
ای سی جی کے علاوہ ایک اور نام ہے اس کا، جو
الٹرا ساؤنڈ، مگر نہیں یہ جو دھک دھک کی آواز آتی ہے،
عورت نے کہہ دیا،
یہ جو دھک دھک کی آواز آتی ہے یہ ای سی جی میں آواز آتی ہے.
ای سی جی کے علاوہ جب الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ کمرے کو ایک دم ڈارک کر دیا جاتا ہے
اور دل دیکھا جاتا ہے،
اور اسکرین پہ دل دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب وہ موو کرتی ہے وہ اپنا، تو اس کے بعد اس وقت جو بیٹ آتی ہے وہ واقعی دل ہلا دینے والی بیٹ ہے. وہ
ایگزیکٹلی بڑی کمال کی بیٹ ہے. بہرحال فاخر کی آواز میں توبہ ہے، توبہ ہے، enjoy this song.
शबाब है चेहरा ये गुलाब है हर अदा अजाब है हुस्न बेहिसाब है तू जो बेनकाब छूकर तुम जब मुस्कुराती हो जुल्फों को छूकर तुम जब मुस्कुराती हो देखने वालों पे बिजली गिराती हो अल्लाह फट गया मत हो तुम मैं दिल हूँ और दिल की चाहत हो तुम हर अदा अज़ाब है हुस्न बेहिसाब
ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस थे जिसे फ्रिज स्टोव डिशवॉशर थ्री पीस किचन बंडल इसके अलावा फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर एनर्जी सेवर एनर्जी स्टार टीवी सेक्शन एच सोनी सैमसंग पैनासोनिक शार्प हर साइज से हर ब्रांड का टीवी विद द लोएस्ट प्राइसेस इन द टाउन सिर्फ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस थे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन या कॉल करो 905-450-2828-905-450-2828
क्या आपकी फैमिली में मसाइल चल रहे हैं और हालात आपको लेके जा रहे हैं डाइवोर्स की जानिब या आपका प्यारा बिना विल लिखे या विल लिखकर आपको छोड़ के जा चुका है विल के मुतालिक कोई भी काम हो या आपको चाहिए ट्रस्टीशिप सर्टिफिकेट या आपकी रियल स्टेट क्लोजिंग नजदीक है और आप हैं एक तजर्बेकार लॉयर की तलाश में इन तमाम कामों के लिए आपकी मदद के लिए एक बाएतमाद इदारा मलिक लॉ ऑफिस बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स मोहम्मद अतीक मलिक आपकी तमाम कानूनी मसाइल में आपकी रहनुमाई करेंगे। GTA में दो लोकेशंस, मिसिसागा 168 क्वीन स्ट्रीट साउथ यूनिट 201, इन स्कारब्रो 1825 मार्कम रोड यूनिट 205। कॉल टुडे मलिक लॉ ऑफिस 905-291-4455.
जी साहब, एक तो फिर से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ आपको। अच्छा, अभी आपको पीछे वाले स्टूडियो में लेके जाऊंगी, जब अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला गुल साहब मेरे साथ होंगे, उनसे बातचीत कराऊंगी। एक डकैती के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मार्कम में ये डाका पड़ा है, आप इस डाके को देखें, आप देखिएगा चोर कितने पक्के हो गए और क्या आराम से दनदनाते फिर रहे हैं घर में। ये है चोर, हाथ में रिवॉल्वर है और किस तरह से बड़े आराम से वो चले फिर रहे हैं। मगर मैं ये कहती हूँ कि अगर कभी ऐसा मौका हो तो कोशिश करें कि उनके साथ बहस न की जाए, आप सब कुछ जो उनको चाहिए उनके सपुर्द करें और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। घर में एक तो इस घर में सामान ही इतना ज्यादा है, पहले तो मैं इस घर के मालिकों को कहूंगी कि भई आप अपने घर में सामान थोड़ा कम करें। लुक एट दिस, कि चोर किस तरह से अपना रिवॉल्वर लेके चले फिर रहे हैं, उन्होंने सामान को क्या कमाल तरीके से बंद किया है, बक्सों में बाकायदा बंद किया और घर से निकलते हुए आप दिखाया। इतने चीता किस्म के लोग हो गए हैं। इन्होंने, पुलिस ने वीडियो फुटेज इसकी रिलीज कर दी है, मार्कम में है और रेजिडेंस ये स्टील्स एवेन्यू ईस्ट और हैंडरसन एवेन्यू के ऊपर 4:12 को हुआ है, शाम को 4 बजे, यानी दिन दहाड़े डकैती हुई है। मिनट लॉन्ग ये क्लिप है जिसमें दो मेल सस्पेक्ट हैं और दोनों ने डार्क रंग के कपड़े पहने हुए हैं। सस्पेक्ट जो है उन्होंने लार्ज सूट केसेस अपने करीब, फ्रंट डोर के करीब उन्होंने रखे हुए हैं, ये देखें, और अपने सामान को बड़ी तसल्ली से बंद किया और किस तरह से निकल के चले गए। दैट्स ऑल व्हाट इट इज। ये मार्कम की रॉबरी, अब रॉबरियां आपको पता ही है, बेशुमार रॉबरीज एंड कॉमन है। सानिया मिर्जा के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ इनका इंटरव्यू देखने के बाद। बाय द वे, इससे पहले मैं आपको लेकर के जानना चाहती हूँ, ये मराकश के एक स्ट्राइकर हैं हमदुल्ला, इन्होंने अपनी टीम के लिए एक गोल किया था, इनकी टीम 4-1 से हार गई थी और वो पेनल्टी कॉर्नर करने में भी नाकाम रहे थे। अब हुआ क्या कि सऊदी फुटबॉल लीग में दौरान मैच, ये सऊदी फुटबॉल लीग में था और ये अबू धाबी में ये मैच हो रहा था, सऊदी फुटबॉल लीग में अबू धाबी में ये मैच हो रहा था। और जैसे मैंने इस प्लेयर के बारे में आपको बताया कि प्लेंटी कॉर्नर लेने में भी ये नाकाम रहे थे, तो इस तरह खिलाड़ी जैसे कर रहे थे, इशारा कर रहे थे, तो इसने उनके ऊपर पानी, जैसे खिलाड़ी शरारत में नहीं फेंकता, तो एक सऊदी खिलाड़ी आमिर को मैंने भेजा, एक सऊदी खिलाड़ी कोड़ा लेके, सऊदी ऑडियंस में से वो बंदा जनाब कोड़ा लेके आ गया और उसने कोड़े से इस प्लेयर को मारना शुरू। कैन यू बिलीव इट, अनबिलीवेबल। जद्दा में कायम इत्तेहाद फुट क्लब के खिलाड़ी को कोड़े पड़ने का वाकया अबू धाबी में हुआ, जहां सऊदी सुपर के कप के फाइनल मैच में इत्तेहाद को अल हिलाल के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये इत्तेहाद का प्लेयर था अब्दुल रज़ाक हमदुल्ला, इसने जाहिर है 1-4 से ये टीम हारी भी थी और इसने पानी फेंका था एक प्लेयर के ऊपर, प्ले ग्राउंड में होता ही है। बहरहाल ये एक और उनकी इज्जत अफजाई हुई है। खिलाड़ी, हालांकि गेम जो है वो हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिया करती होती है, मगर मुझे लगता है अच्छा इंसेन इंसान अब इंसान नहीं रहा, हमसे जानवर कंपैरेटिवली बेहतर है। मैं पाकिस्तान में
इंसान इंसेन हो गया,
इंसेन हो गया। अच्छा, हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं ना, तो हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि मैं एक और आपको वाकया दिखाना चाहती हूँ, बड़ा कमाल का। बाय द वे, हाँ ये देखे माजिद भाई, ये वो प्लेयर है हमदुल्ला और वो एक सऊदी है, अबू धाबी में ये हुआ है और उसने जनाब आके कोड़ों से, आई एम सरप्राइज कि वो कैसे कोड़े लेके पहुंचे हुए थे सिक्योरिटी वाले। ये सऊदी है अबू धाबी में जो ये वाकया,
अगर आप देखें ना, नोट करेगा तो ये इनके जो सर पे बना हुआ होता है ना,
अच्छा ये देखिए क्या है, नहीं उसने सर वाला नहीं उतारा, उसने पानी, ये आपस में कोई बहस हुई होगी, ये अल हलाल को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेयर और अल इत्तेहाद प्लेयर जो है हमदुल्ला, ये इसको फिर कोड़ों से मारा। अब आप देखें इसको किस तरीके से लिया जाता है। बाय द वे, मैं एक और न्यूज आपके साथ शेयर करती हूँ, टेस्ला जो है वो तकरीबन 10% के करीब अपने एम्प्लॉयज उनको फारिग करने जा रही है। एक और चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अच्छा, पाकिस्तान में तो अक्सर हमने देखा है जिसमें मार कुटाई हो जाती है। लोटे चलते हुए आपने असेंबली में देखे थे ना, लोटे चलते हुए भी देखे, जूतियां पड़ती हुई भी देखी। अभी साहब ये जॉर्जिया की पार्लियामेंट में ये भी देखने वाला। देखिए माजी भाई, ये जॉर्जियन एक जो इस वक्त उनकी जो रूलिंग पार्टी है ना उसका बंदा, ये एक बिल पास होने लगा है। ये बिल जो है कहा जाता है कि वो एनजीओ मतलब रशिया की रशिया की सुपरमेसी इस बिल में होगी। उसके बाद जनाब वो बंदा उठ के आता है ऑपोजिशन का और उसने आके उसकी कमर के ऊपर इतना वो सर के ऊपर मुक्का मारा है और आप देखिए क्या होता है। बहरहाल इट्स वेरी सैड। ऑपोजिशन लॉ मेकर उसकी असॉल्ट की गई है मेंबर पार्लियामेंट की बकायदा इजलास के दौरान जब वो ये बिल पेश करने लगा था और सर के ऊपर रूलिंग पार्टी का ये मेंबर पार्लियामेंट है जिसको उसको पता भी नहीं था इसके बच्चे से इसका बड़ा मजाक।
ये तो सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री,
थर्ड वर्ल्ड तो क्या है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हो रहा है? इट इज वर्स देन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अ कंट्री विच सेज विच रूल्स द होल वर्ल्ड एंड द कंट्री जो कि पूरी दुनिया को सुधारने के लिए निकला हुआ है। इट्स जो बाइडन अपने ओपोनेंट को स्नब करने के लिए ही इज डूइंग एवरी थिंग एंड एनी थिंग वॉट ही कैन विद इन हिज कैपेसिटी, वॉट एवर इज इन हिज कैपेसिटी ही इज डूइंग एवरी थिंग पॉसिबल जस्ट डोनाल्ड ट्रंप को नीचा दिखाने के लिए। मतलब आप सोचिए कि पूरी की पूरी जूरी अपने मकसद की लगा दी। एनी वेज शुक्रिया हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का जिनके तवस्त से मैं आपके साथ ये प्रोग्राम शेयर करती हूँ। मलिक लॉ ऑफिस के अतीक मलिक साहब का बहुत शुक्रिया, 9052914455 पावर अटॉर्नीज हैं, रियल स्टेट से मुतलिक है, आपकी कोई डिवोर्स का मामला चल रहा है रियल स्टेट से मुतलिक है या आपने कोई कुछ भी बनवाना है तो आप अतीक मलिक साहब से राबता कर लीजिए, 9052914455 उनका नंबर है। बाय द वे इस फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को क्विक ट्रक ल्यूब यानी टोरंटो ट्रक का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है इंटरनेशनल सेंटर में, पूरा का पूरा इंटरनेशनल सेंटर ट्रक वर्ल्ड .ca के ऊपर अगर आप जाएं। और अगर आपको उसका कूपन चाहिए तो इसके कूपन के लिए आप जहां टिकट्स पे आपने चेकआउट करना है तो कूपन में QTL आप डालेंगे तो ये $20 की टिकट का आपको कूपन मिल जाएगा, देन यू डोंट हैव टू पे एनी मनी। ठीक है। अच्छा, मेरा नाम आरफा मुजफ्फर, आपको पता ही है ना, मैं रियल स्टेट से मुतल्लिक अगर आपका कोई मामला है तो प्लीज गिव मी अ कॉल, मेरा नंबर 6478986245। आई लुक फॉरवर्ड के टू वर्क और अगर मुझे प्रेजेंटेशन देनी हो तो आई डेफिनेटली कम प्रेजेंट कि हम किस तरह से आपका घर बेचने या आपने प्रॉपर्टी अगर खरीदना है तो हाउ कैन वी यू नो वर्क फॉर यू। 6478986245 या मेरा एक और नंबर है 6479797 आरिफा, 6479797 आरिफा, आप ARIFA 97 आरिफा आप देख लीजिएगा और यकीनन यू कैन गिव मी अ कॉल। आइए मैं आपको पीछे की तरफ लेके चलती हूँ हमारे स्टूडियो में जहां पे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी जनाब अब्दुल्ला गुल साहब के साथ। हमें थोड़ा सा चाहिए कि हम अपने कुएं में से निकलने के बाद जियो पॉलिटिक्स की तरफ तवज्जो जरूर दें, इंटरनेशनली क्या हो रहा है इसमें अपनी सोच को इस्तेमाल कीजिएगा और मेरे साथ रहिए। जी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे फा मुजफ्फर, हमारी वेबसाइट www.eawaz.com। आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान और हम जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। अमेरिका की जो पोजीशन है, जो स्टैंस है, आज फ्रांस ने जो बयान दिया है टू एलिनेट ईरान और जो ईरान की सूरत हाल है, आप देखिएगा साहब 1 अप्रैल दमिश्क में ईरान के काउंसिल खाने पर हमला होता है जिसमें ईरान के जो एक सीनियर कमांडर हैं और पासदारान इंकलाब IGRC की बैरूनी जो शाख है कुड्स फोर्स उसके सीनियर कमांडर जनरल मोहम्मद रजा जादी अपने 13 साथियों के साथ शहीद हो जाते हैं। اب ایران کا 100% یقین ہے کہ یہ اسرائیل نے کیا, اسرائیل اس بات کو مان بھی نہیں رہا, اور کورس دس از ڈن بائی اسرائیل. اسرائیل صرف ایک چاہتا ہے کہ ایران اس کو ہٹانا چاہتا ہے. آپ کو پتہ یہ ہر جگہ پہ جو بلیم کی پالیٹکس ہے. آج کے پروگرام میں میں اگر جناب عبداللہ گل صاحب کو لے کے آئی ہوں تو کیوں لے کے آئی ہوں, مقصد یہ ہے کہ نمبر ایک یہ کہ ان کے کلوز ریلیشنز ہیں, جس کو پرویش بھائی وہ ظاہر انٹیلیجنس کا ایک ادارہ تھا, بچوں کی انوالومنٹ پیرنٹس کے ساتھ ہوتی ہے, مگر والد کے جانے کے بعد بھی جناب عبداللہ گل صاحب کا اس نیٹ ورک میں کلوز تعلق ہے. ہماری پاکستانیوں کی پرابلم یہ ہے کہ ہم وائز تو بہت ہیں, ہر ایک کو باہر والے کو مشورہ دیتے ہیں, گھر کے مسائل ہمارے سے حل نہیں ہو رہے. میں جب ایران کی طرف دیکھتی ہوں تو ایران اور پاکستان ترکی ہمارے بہترین تعلقات ہوا کرتے ہوتے تھے. آج ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے جناب عبداللہ گل صاحب سے. میرا ایک اور ریزرویشن بھی ہے, اور وہ ریزرویشن میری یہ ہے کہ آج ایران نے جب اپنا ایک فتویٰ دیا ہے, اور اس فتویٰ آج سے نہیں پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ جو شیعہ اور سنی کی جو رفت ہیں ان کو کسے ختم کیا جائے. مجھے ایک اس فتنے میں جو ایک چیز لگی میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہوئے جانا چاہتی ہوں. ایران ایفرٹ ٹو بلڈ دا شیعہ سنیز رفٹ کے غزہ میں جب وار ہوئی ہے تو تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونا چاہیے. انہی ٹاپکس پہ بات کرتی ہوں جناب عبداللہ گل صاحب. سر السلام علیکم, بہت شکریہ فار یور ٹائم. تھینک یو.
السلام علیکم, آپ کی شکریہ, بہت مہربانی.
سر ہم نا اپنے ہی مسائل میں سے, اپنے ہی بھمبل بھوزے میں پھنسے ہوئے, ہم اس میں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے, مگر انٹرنیشنل پالیٹکس پاکستان پہ کتنی اثر انداز ہے. اینڈ پاکستان میں دس از ویری انفارچونیٹ, میری رائے سے آپ کا متفق ہونا قطعاً کوئی ضروری نہیں ہے. ہماری جو اشرافیہ ہے, جو مقتدر حلقے ہیں, جن کے پاس اقتدار ہے, جن کے پاس ملک کی باغ دوڑ ہے, انہوں نے عجیب و غریب معاملوں کے بیچ میں پھنسایا ہوا ہے, مگر انٹرنیشنل پالیٹکس اور امریکہ کا اثر و رسوخ پاکستان پہ کتنا اثر انداز ہے اور اس خطے پہ کتنا اثر انداز ہے. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو اٹیک ہوتا ہے 1 اپریل کو اور ریٹیلیٹ کرتا ہے ایران, میں انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر رہی ہوں, وہ بار بار یہ لفظ کہہ رہے تھے کہ ان ریسپانس اینڈ ان ریٹیلیشن ٹو واٹ ہیپن ان عراق کے کونسل خانے میں, مگر اس کے باوجود جب وہ ریٹیلیٹ بھی یوز کر رہے ہیں لفظ, اور آن دا ادر سائڈ وہ ایران کو ایلینیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, جس میں مسلمان ممالک کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ایلینیٹ کر دیں, اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیشہ مجھے بہت عزت دیتی ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو گزشتہ عید مبارک ہمارے تمام جو ویورز ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ ایران کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایران جو ہے وہ جیسا بھی تھا, اچھا برا, اس کے اوپر تر ہم بعد میں جا کے بات کریں گے, کیونکہ مختلف آرا ہے, مختلف جو ہے سوچ ہے, فکر ہے. لیکن اصلی بات یہ ہے کہ ایران جب سے ریولوشن آیا تو اس کے بعد ایک ان کی دنیا مختلف ہو گئی, اور جب دنیا مختلف ہوئی ان کی تو پھر انہوں نے اندازہ کر لیا کہ اب جو معاملات ہیں وہ ان کی مرضی سے چلیں گے. تقریباً 50 سال ہونے آئے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے سخت ترین جو سینکشنز ہیں ان کو جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں. اب ان سینکشنز کے اندر جہاں نقصانات ہوئے وہاں فوائد یہ ہوئے کہ وہ ایک قوم بن کر ابھر آئے. ایران کی تاریخ کے اندر اگر جایا جائے تو جب اسلام نہیں تھا تب بھی سلطنت فارس جو تھی وہ ایگزسٹ کرتی تھی, مصر کی جو سلطنت تھی وہ ایگزسٹ کرتی تھی. اس لیے جو ایران ہمیشہ سے ایک ملت, ایک قوم, ایک مضبوط جو قوت تھی وہ جانا پہچانا جاتا تھا, یہ تاریخ کے پنے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ اگر ریولوشن کو دیکھ لیا جائے تو ریولوشن کے بعد ان کی سوچ اور فکر کے اندر, اور وہ لوگ اقتدار کی مسند پہ آئے جن کو پہلے کچھ حاصل نہیں تھا. یعنی کہ آپ اندازہ یہ کیجئے کہ جو بیچارے ڈاؤن ٹراڈن لوگ تھے سوسائٹی کے, بالکل غریب اور نادار طبقہ تھا, وہ آ گیا میدان کے اندر اور وہ آ کے اقتدار کے اندر آ گیا. اور یہ وہ لوگ تھے جن کا شاہ اور شاہ کی فیملی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ طبقہ جب آیا تو اس نے وہ دوست عوام دوست پالیسیز بنائی جس سے عوام کو فائدہ ہوا. और जाहिर है अवाम जब कॉमन आदमी जब जुड़ गया तो वह एक मजबूत कुव्वत उभर आई। और उसके बाद जनरल कासिम सुलेमानी जो थे उन्होंने एक दफा एक सेमिनार के अंदर बताया कि जब वो 22 साल के थे तो डिवीजन कमांड करने के लिए उनको जो है मधु कर लिया गया, क्योंकि उस टाइम पे जो शाह की फौज थी वो सारी की सारी तो या तो फरार हो गई थी बैरून मुल्क, और या फिर जो है वो उसने लड़ने से इनकार कर दिया जब खुर्रम शहर के ऊपर जो है हमला हुआ इराक की जानिब से, और उसके नतीजे के अंदर उस मार्के के अंदर और ईरान इराक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर 2.5 लाख के करीब जो ईरानी थे वो उस जंग का लुकमा बन गए। और जाहिर है लेकिन इसके बाद उनकी रेजिलियंस बढ़ गई, स्कड मिसाइल्स जो है वो मारे जाते थे उनके ऊपर और बड़ा कुछ हुआ, लेकिन ईरान जो है वो रेजिस्ट करता रहा। रेजिस्टेंस के नतीजे में कौम के अंदर रेजिलियंस पैदा हो गई, और आपने देखा कि जब जनरल कासिम सुलेमानी की पिछले साल उनकी बरसी थी तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा वाकया हो गया और वहां सैकड़ों लोग जो थे वो लुकमा अजल बन गए जब दहशतगर्दी के दो वाकयात किरमान शहर के अंदर वहां हुए, और ये किरमान वो जगह है जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, तो वहां ये वाकयात हो गए। बहरहाल ये भी जो है वो ये कहते हैं कि जनरल कासिम सुलेमानी की जो उनके ऊपर टारगेट किलिंग थी उसके पीछे भी वो अमेरिका को कहते हैं, और खुद अमेरिका ने इस बात को तस्लीम किया। और उसके बाद जो है वो फिर साथ ही साथ जो है ये जो अभी हालिया वाकया जो सिफारत खाने का हुआ, आप जानती हैं कि सिफारत खाने की जो जमीन होती है वो मलकियत हुआ करती है उसी मुल्क की जिधर जिसका सिफारत खाना होता है, वहां उसके कवानीन होते हैं और वहां चाहें तो वो अपनी पुलिस या फौज रख सकते हैं, और रखी हुई भी है, पाकिस्तान में भी रखी हुई है और पाकिस्तानी सिफारत खानों में भी गैर मुल्कों में हमारी फौज के लोग तायिन होते हैं। अब ये बात आ गई कि उन्होंने हमला किया, अब ईरान ने गो के इसकी एक्सेप्टेंस इसराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन नतीजा ये था कि पूरी दुनिया का मीडिया यही बात कर रहा था, यही इशारे दे रहा था कि ये इसराइल का किया धरा है। और जाहिर है अभी जो आपने कहा ब्रिगेडियर जनरल जो जाहिदी थे उनको जो है वो वहां हलाक कर दिया गया, और उससे पहले जो वहां दो कोर कमांडर थे उनको भी शहीद कर दिया गया, और साथ ही साथ 13 और अहम एहलकार जो थे वो शहीद कर दिए गए। जंग के बादल जो थे वो मंडला रहे थे, अभी चारों तरफ से अगर आप गौर करें तो शाम में और इसी तरीके से लबनान में, सीरिया और ये इराक में, और इस तरफ यमन के अंदर ईरान की इन्फ्लुएंस्ड हकूमतें मौजूद हैं, एक किस्म की आप उनको फ्रंट लाइन हकूमत कहें तो मेरे ख्याल में मजायका नहीं होगा। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर ईरान की जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं वो भी साथ साथ चल रही हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो बहुत तकवीयत पकड़ चुका है, इस सारे इसना के अंदर उन्होंने बहुत अपना वेपन सिस्टम जो है वो बेहतर किया। आपको याद होगा कि जब इराक जो ईरान का अमेरिका के साथ फड्डा नहीं शुरू हुआ था तो उस कॉन्फ्लिक्ट से पहले आरसीडी हाईवे वगैरह पाकिस्तान के साथ बड़े देरीना ताल्लुकात, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और अमेरिका जो था उसके भी ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, क्योंकि अमेरिका एक तरफ जो अफगानिस्तान में सोवियत रीच बैठा हुआ था या वहां से जाना आना चाहता था, उससे खत्ते में इन्फ्लुएंस रखता था अफगानिस्तान में, वो सोवियत रीच जो था उसको रोकने के लिए पाकिस्तान जो था एक बफर स्टेट थी। इस तरफ जो था वो यमन में भी और इराक में भी और सीरिया के अंदर भी बकायदा सोवियत यूनियन के डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए हुए थे, डिफेंस पैक्ट हुए हुए थे, जिसको जाहिर है बफर के लिए उनको ईरान चाहिए था। ईरान ने उस वक्त अमेरिका की मदद से जो उनको मदद आई, मिलिट्री एड आई, उसके अंदर शिनूक हेलीकॉप्टर जो आज भी बड़े एक इम्पॉर्टेंट हेलीकॉप्टर माना जाता है, दो पंखों वाला, वो शिनूक हेलीकॉप्टर दिए गए। F-4E फैंटम जहाज जो थे लड़ाका तैयारे वो उनको दिए गए, उनको मॉडर्न टैंक्स दिए गए, उनको मॉडर्न इक्विपमेंट दिया गया, उनको जो है वो इसी तरीके से जो इंटेलिजेंस वॉरफेयर का सिखाया गया, और साथ ही साथ उनको मिसाइल बोट्स और बड़ी जदीद नेवी के जो वेसल्स थे वो उनको फराहम किए गए। इस बुनियाद के ऊपर ईरान ने अपनी दिफाई इंडस्ट्री को बेतहाशा तकवीयत दी, और सेल्फ रिलायंस के ऊपर चले गए और एक वक्त में जो उन्होंने न्यूक्लियर का मामला जो है वो भी शुरू कर दिया और फिर हद ये हुई कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में इतना मलका हासिल किया कि अमेरिका ने आज से 2-3 साल कबल जब एक ड्रोन भेजा तो ना उस ड्रोन को गिराया गया, ना उसको जो है वो मारा गया, बल्कि उस ड्रोन को उतार लिया गया अपने कंप्यूटर्स के जरिए, उनके कंप्यूटर्स को हैक कर लिया गया अमेरिका के और उसके जरिए उस ड्रोन को ओवरराइड करके उसको उतार लिया गया। 8 महीने बाद अमेरिका ने उन तमाम खामियों को मद्देनजर रखते हुए ट्रायल के ऊपर एक और ड्रोन भेजा और ईरान ने वही नतीजा जो पहले निकला था वही दोबारा किया। उसके बाद अमेरिका ने वहां ड्रोन नहीं भेजा। इसलिए ये जो ड्रोन जो इस टाइम पे इजराइल गए, न सिर्फ ये ड्रोन थे बड़े साइज के बल्कि ये असले से लैस थे और ये जब मिसाइल्स आए हैं 331 मिसाइल्स ईरान की जानिब से, तो उस टाइम पे ये मुख्तलिफ जो ममालिक जिनका जिक्र मैंने अभी किया उनसे ये ड्रोन उड़े और ये ड्रोन जो थे इन्होंने जब आयरन डोम के ऊपर वो मिसाइल गिराने में जो है वो मसरूफ थे तो ये ड्रोन जो थे उनके आयरन डोम की जो लिमिट्स थी उनको क्रॉस करके अंदर आ गए। गो के इसमें बहुत सारे बरतानवी एयरफोर्स ने, जर्मन एयरफोर्स ने, अमेरिकन एयरफोर्स ने और साथ ही साथ जो फ्रांस की एयरफोर्स है और फिर किसी हद तक उर्दन की एयरफोर्स ने उसको काउंटर किया, लेकिन ये तादाद में बहुत ज्यादा थे और इनमें ज्यादातर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जो है हामिल थे, यानी के रेडार पे नजर ना आने वाले और ये टेक्नोलॉजी किसी और ने नहीं बल्कि ये टेक्नोलॉजी खुद अमेरिकन ड्रोन की थी जो वहां उन्होंने उतारा। अब ये सारी सूरत हाल सामने रखते हुए अगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ईरान को क्या पड़ी थी ये सारा करने की और ईरान की वजह से सारा मामला खराब हो गया, तो क्या फिर गजा के अंदर जंग रुक गई थी? क्या जो 57 इस्लामी मुल्क बाकी रह गए हैं जो सुन हो के सुन्नी रह गए हैं, मैं देखिए मैं मसालिक का एहतराम करता हूं लेकिन कम से कम अगर ये कहें कि जी ये अमेरिका की मर्जी से हुआ, क्योंकि इसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें अमेरिका की मर्जी से उन्होंने किया, उन्होंने सलाना किया, ये मिली भगत है, वो अंदर से एक ही है। भाई बाकी लोग तो अंदर से एक नहीं है ना, चलें बाकी लोगों में तो गैरत थी ना, बाकी लोगों की तो 58 लाख जो इज्तमाई इस्लामी फौज है वो तो मौजूद थी, उन्होंने हमला कर लिया। क्या किसी ने एक गोली चलाई? क्या किसी ने एक रॉकेट दागा? क्या किसी ने एक सिपाही भेजने की कोशिश की? नजर ये आ रहा है कि खित्ते के अंदर जितनी शहादतें हो रही हैं वो ईरान के सीनियर और जूनियर अफसरान समेत उनकी सिपाह की हो रही हैं और वो अलकुद्स ब्रिगेड वही है जो उनके अपने ईरान के बॉर्डर से बाहर निकल के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को वॉच करती है और वो जाके मैदान अमल जो है।
मैं फिर आपको यहाँ इंटरप्ट करना चाह रही थी कि 1979 तक ईरान और इसराइल के ताल्लुकात अच्छे थे, आयतुल्ला खामेनेई साहब आते हैं तो उसके बाद जाहिर उन्होंने स्टैंड लिया, आज तक ईरान ने इसराइल को एक्सेप्ट भी नहीं किया हुआ। मुसलमानों को हर स्टेज के ऊपर डिवाइड एंड रूल किया गया, ऑटोमन्स को भी तोड़ा गया था तो मुसलमानों को ही उनके अगेंस्ट तोड़ा गया था इकतदार की हवस दे के। मैं आज महसूस कर रही हूं कि जाहिर है फ्रांस ने भी ईरान को बिल्कुल एलिनेट करने का कहा है, लिबनान जो है लिबनान भी अगेंस्ट फ्रांस, हालांकि गजा की सूरत हाल में लिबनान भी प्राइस पे कर रहा है मगर लिबनान भी ईरान के अगेंस्ट चला गया। फिर जो पाकिस्तान से जितने तज्जियात आ रहे हैं वो कहते हैं जी 140 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चलने वाले ये ड्रोन, मगर दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर के इंटर कॉन्टिनेंटल ये इन्होंने ईरान से डायरेक्ट अटैक किया है इन इसराइल, जिसका इसराइल को हमेशा से रिजर्वेशन रही, इस पे आप क्या फरमाएंगे कि वी आर डिवाइडेड एंड रूल्ड वेरी बैडली?
ये मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल होते हैं, ये इंटर कॉन्टिनेंटल नहीं थे, ये मीडियम रेंज मिसाइल थे और कहीं कहीं लॉन्ग रेंज इस्तेमाल हुए। 140 हुआ या फलाना हुआ, क्या ये खुद इसराइल मान रहा है कि उनको डैमेज हुआ? क्या तस्वीर
नहीं मान रहा, हालांकि उसकी वीडियो फुटेज भी है। चलें जी 301 या 303 को उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया होगा, 7 जो निशाने पे गिरे उनका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा।
नहीं, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि मान तो इसराइल ने भी लिया ना, उन्होंने 99% कहा कि हमने इंटरसेप्ट कर लिए, तो 1% तो आया ना। तो फिर वो जो बेस था उनका, जो ऑफिशियल वहां मिलिट्री बेस था जिधर से ऑपरेशनल जहाज उड़ते थे और हमला करते थे, तो फिर क्यों नहीं, जिस दिन से ये वाकया हुआ उस दिन गजा के ऊपर कोई जहाज क्यों नहीं आया इसराइली? क्या वजह हो गई? क्या वो जो F-16 की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो F-18 हॉर्नेट्स का दिखा रहे हैं, उनका क्या बना? वो कहां से तस्वीरें आई हैं? और खुद जो भगदड़ की वीडियो मौजूद हैं, आयरन डोम तो पहले भी नाकाम हो गया था ना आता साहिबा, 7 अक्टूबर 2023 को क्या आयरन डोम की नाकामी पूरी दुनिया ने नहीं देखी? क्या अमेरिका के खुद लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया आयरन डोम? क्या अमेरिकन ऑफिशियल्स ने इस बात को नहीं माना? क्या इजरायलियों ने इस बात को नहीं माना? देखें, बेंजामिन नेतन्याहू की एक अपनी पॉलिसी है और उसको पता है कि मैं इस टाइम पे इंडिस्पेंसेबल हूं वेस्ट के लिए, और वेस्ट अगर सारा इकट्ठा खड़ा हो सकता है जुल्म और जाहिरियत के खिलाफ, मतलब के साथ, जुल्म और जाहिरियत के साथ खड़ा हो सकता है, दरिंदगी के साथ खड़ा हो सकता है, दहशतगर्दों के साथ खड़ा हो सकता है, तो फिर क्या आलमे इस्लाम को नहीं खड़ा होना चाहिए आज?
सर, मैं इसीलिए तो आपसे पूछा कि लिबनान को क्या हो गया कि आज लिबनान ने भी ईरान के अगेंस्ट फैसला दे दिया, हालांकि लिबनान इटसेल्फ इज पेइंग अ ग्रेट प्राइस।
ये चीजें आती रहती हैं, ये वक्ती होती हैं, लेकिन हमें पता है हिजबुल्ला वहां मजबूत है और बड़ा जबरदस्त उन्होंने, देखिए ये जब हुआ, क्या उससे पहले हसन नसरुल्ला का आपको याद नहीं है? पूरे आलम इस्लाम के अंदर लोगों ने घरों में हसन नसरुल्ला की तस्वीरें लगा ली थी, क्या वजह थी? तो फिर ये जो अब देखें, जो सबसे बड़ा आपने फतवे का जिक्र किया, ये बड़ा अहम है, जब वो कहते हैं
कि स्क्रीन के ऊपर जो ये फतवा आया, दिस इज नॉट समथिंग कोई फैब्रिकेटेड न्यूज नहीं है, दे जस्ट वांट टू ब्रिंग टुगेदर मुस्लिम उम्मा को, दे वांट टू ब्रिंग देम टुगेदर।
वो शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहे, इमाम खुमैनी जो थे उन्होंने अपने एक बड़ा, ये उनका कोट अनकोट उनका एक बयान मौजूद है बड़ा ऑफिशियल, और उन्होंने कहा कि उस वक्त दुनिया में वो 5% थे, उन्होंने कहा हम 5% हैं, हम सुन्नी वर्ल्ड के साथ टकराव नहीं बल्कि मुफाहमियत चाहते हैं, ये उनके अल्फाज हैं। उसके बाद जो है, जो कुछ भी हुआ वो हमें याद है कि वो अरब दुनिया की प्रॉक्सी वॉर पे हुआ। अरब दुनिया को क्या पड़ी थी अमेरिका के कहने पे $82 बिलियन जो है उन्होंने इराक को दिए ताकि ईरान पर हमला करे, ये बात वो सारी है जो कि डॉक्यूमेंटेड है, मैं कोई आपको अपने तौर पर कोई बात नहीं बता रहा। फिर इसी तरीके से ईरान के, अगर आप देखें कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात एक वक्त में बहुत ही देरीना ताल्लुकात थे, और मैं वो बात नहीं करना चाहता, यहाँ एक सीरियस मौजू है, लेकिन शाह ऑफ ईरान की भी कुछ बहुत ही उनके अयाश तबीयत थी, और कुछ यहाँ भी रियाया खान जो थे वो रंगीन मिजाज थे, तो वो घंटों घंटों बेहुदा गुफ्तगू किया करते थे। इसका जो है वो मुमताज मुफ्ती की किताब में भी जो है वो मौजूद है, और लौहे आयाम, और इसके साथ ही साथ जो किताब है इनकी, देखें बड़ी अच्छी, हैकल, उसके अंदर भी मौजूद है कि वो किस तरीके से ईरान के हवाले हुआ। लेकिन भारत, ईरान कॉन्ट्रा हो या ईरान पेपर्स हो, जब मसला तब शुरू हुआ जब ईरान की जो अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी थी उसको रेवोल्यूशन के बाद अंडर सीज रख लिया गया 404 दिन, और उसके बाद वो तमाम पेपर वहां से बरामद हुए जिसके अंदर उनके खुफिया दस्तावेजात थी, और 404 दिन अमेरिका ने जोर लगा लिया लेकिन ईरान से अपने बंदे नहीं छुड़वा सका, उस एम्बेसी को नहीं छुड़वा सका। नतीजा यह हुआ कि उसके अंदर कुछ बहुत ही अहम लोगों के नाम आए, और बताया गया कि उसके ऊपर लिखा हुआ था, मोर लगी थी, सोर्स प्रोटेक्ट, यानी कि ये हमारा सोर्स है, इसको प्रोटेक्ट किया जाए। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के एक साबिक वजीर खारजा जो थे वो भी उस सोर्स को, उसके अंदर उनका नाम था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो दुनिया से जा चुके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जानने वाले ये जानते हैं, किताबें पढ़ लें, नजर आ जाएगा, खुद कुछ भी कोशिश करें खुद भी। बहरहाल मकसद यह है कि उसके बाद जो पासदारान इनकलाब थे वो एक यंग लोग थे, जैसे मैंने आपको कहा कि कासिम सुलेमानी 22 साल के थे जब उन्होंने डिव की कमांड की, क्योंकि ईरान के जो जनरल थे उस टाइम पे जो शाह के वफादार थे वो तो भाग गए थे, और
मैं यहाँ से अब हम क्विकली रैप करते हुए आगे की तरफ लेके चलते हैं, आपकी बड़ी नॉलेज है, थैंक यू वेरी मच।
मैं तो आपकी इजाजत से ये बड़ा अहम नुकता है, बिल्कुल एक मिनट में। अब वो वहां जो इतने जबरदस्त किस्म के वो लोग थे, वो यंग लोग थे, ज्यादातर हाफिज़े कुरान थे, उन लोगों ने क्या किया कि उनका ये ख्याल था कि ज़ियाउल हक़ साहब, जो कि ईरान के अभी ये जो वाकया हुआ था, अभी शाह ऑफ ईरान की हुकूमत पलटने में सिर्फ एक हफ्ता रह गया था, हमारे फॉरेन ऑफिस का कसूर था कि उन्होंने बताया नहीं और ज़ियाउल हक़ साहब वहां चले गए। ईरान के लोगों का और खासतौर पर पाकिस्तान का ये ख्याल था कि जनाब ये हमारी जो असल में अमरीका के कहने पर आए हैं और हुकूमत को दवाम बख्शने आए हैं और शाह ऑफ ईरान के साथ खड़े हुए हैं। एक हफ्ते के बाद हुकूमत खत्म हो गई, नतीजा ये हुआ कि जब पासदारान ने आजादी की मार्च की तो उसके अंदर पाकिस्तान के झंडे जो थे वो जमीन पे बिठा दिए और उनके ऊपर से मार्च किया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के जो सफीर थे वो एहतजाजन वहां से उठ के चले गए और ये वो दिन था जो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात खराब होना शुरू हुए और अरब दुनिया ने पाकिस्तान के अंदर और ईरान ने अपने पाकिस्तान में अपनी जो एक प्रॉक्सी जो थी वो शुरू कर ली, जो कि मेरे ख्याल में अभी तक उसके असरात नजर आते हैं। अब आप बात कीजिए,
आपका बहुत शुक्रिया सर, जो आपकी नॉलेज
हुए, लेकिन अब वो ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं।
जो नॉलेज है, मैंने आई लर्न अ लॉट एंड वी ऑल लर्न अ लॉट आपसे, मगर अभी आपने जो एक बात कही कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली सर अमेरिका ने एक बार नहीं और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको तजदीद दी थी ये कह के कि पाकिस्तान के लोग डॉलर के वजह, और ये आम आदमी की बात मैं नहीं कर रही, ये जो पाकिस्तान की मुख्तदर हलका है उनकी बात करते हैं कि कौन से लोग हैं जो अमेरिका के वहां पर दे आर रेडी टू डू एनीथिंग एल्स। आप चले जाएं, आपको याद होगा ब्लैक वाटर का एक जो स्कैंडल शुरू हुआ था, हुसैन हकानी साहब वॉज आर एम्बेसडर, CIA के लोग कैसे पाकिस्तान में दंदनाते हुए फिर रहे थे, गवर्नमेंट को उसके बारे में पता था, ड्रोन अटैक पाकिस्तान की सल्तनत से सतह से उठ के किए जा रहे थे, मतलब मगर हम हर जगह पे तारीख को गलत मलत करने के चक्कर में पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। और पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है आज भी, जो पाकिस्तान की मुख्तदर हल्के आज भी CIA का एक एजेंट है, वो पाकिस्तान में उसको एक नहीं चार पोजीशन दे दी, आपकी सारी पोजीशन दे दें पाकिस्तान की, लेट अमेरिका रूल देम, देर आर सम पीपल हु विल मेक मनी। मगर मैं सर तीन सवाल क्विक आपसे करना चाहती हूँ, हालांकि उसके लिए मैं इंटरनेशनल प्रॉब्लम को आज लुक आफ्टर करना चाह रही थी। अभी रिसेंटली सर बहावल नगर का वाक्या हुआ है और बहावल नगर के वाक्य पे बिकॉज पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम है, शहबाज शरीफ साहब आपको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नजर आ रहे हैं और फिर मुख्तलिफ वज़राए आज़म है, पंजाब ने क्लैरिफिकेशन नहीं दी, भावल नगर कम्स अंडर पंजाब, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, स्टेट ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। अब वो कहते हैं कि भाई हाँ भाई तुम हाइब्रिड हुकूमत कर रहे हो, फौजी हो तुम, साथ मिले हुए हो, फौज का और पुलिस का डायरेक्ट तसादम है, आपका IG पंजाब कहता है कुछ दहशतगर्द दे डोंट रिकग्नाइज के दे हैव डन अ प्रॉब्लम, दे डिड रॉन्ग और दो इदारों का तसादम हुआ है, तो आपकी पॉलिटिशियंस ने इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी बिकॉज दे वॉन्ट कि भाई हाँ जी अब स्टेट जाती तौर पे इन्वॉल्व हो गया, कुछ इसके बारे में आप कमेंट करेंगे?
जी मैं बिल्कुल इसके ऊपर भी, लेकिन हुसैन हकानी का पहले कर दूं। हुसैन हकानी जो थे वो हडसन इंस्टीट्यूट में फेलो ऑन लीव थे, जब वो उनकी बकायदा वेबसाइट पे जाके देखा जा सकता है, बहरहाल वो फेलो ऑन लीव थे और वो पाकिस्तान के सफीर जो है वो साथ ही साथ बन गए, छुट्टी पे थे तो उन्होंने कहा सोचा सफीर भी बन जाएं, उसके बाद वो सफीर बनते बनते उन्होंने वहां कुछ वीजे जारी कर दिए, 7,000 वीजे उन लोगों को जारी किए गए जिन्होंने वीजा एप्लीकेशन ही नहीं दी थी, और उसके साथ वो क्या कुछ नहीं लेके आए। और ये भी मैं बड़े अफसोस से कहूंगा कि वो जो यहां जब एयरपोर्ट पे आते थे तो विदाउट स्क्रीनिंग उनको उनका सामान जो है बाहर ले जाने दिया जाता था। जी वर्ल्ड वाइड थी, डैन कॉर्प थी, ऑरेंज फोर्स थी या ब्लैक वाटर था, उन्होंने इस्लामाबाद के हर गली मोहल्ले के अंदर अपने घर बना लिए हुए थे और उसकी कार्रवाइयां जो है वो नजर आई और रेमंड डेविस उसका एक शाखाना है। बहरहाल ये तो यहां तक आपने हुसैन हकानी की बात की, उसके बाद फिर मेमो गेट्स
के हुसैन हकानी साहब का ही दौर था जब ईरान के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ने के लिए रोल प्ले हुआ, ये भी वही दौर था, दे हायर्ड पीपल अब्रॉड, इन्होंने हायर किए थे और अच्छी तनख्वाहें देके टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन ईरान एंड दैट इज व्हाट अमेरिका वांटेड, That is what America wanted.
वो उनका आदमी था ना जी, तो वो उनका आदमी था, उसको उन्होंने देखे वही अपने पास रखा हुआ है, बड़ी मेहमानदारी करते हैं। भारत, अब हम आ जाते हैं आपके सवाल की जानिब जो भावलपुर से रिलेटेड है। भावलपुर का पूरा केस मुझे बिल्कुल पता है और मैंने इसके ऊपर बड़ी तहकीकात भी की है, मेरा व्लॉग भी मौजूद है इस पे। बहरहाल इसमें कोई शक तो शुभा नहीं है कि हाइब्रिड एक सिस्टम चल रहा है, तो मैं समझता हूं कि इसी में सियासतदानों ने आफियत जानी कि जिसको पंजाबी में कहते हैं सानू की बात खत्म है, और ये जाने इनका काम जाने।
ये तो तसादम बड़ी बात है, वो कहते हैं ना उन्होंने, आपके पॉलिटिशियंस ने तो क्लैरिफिकेशन भी कोई नहीं दी, नोबडी माजरत सॉरी कोई ऐसी चीज नहीं, क्योंकि अब वो ये चाहते हैं कि फौज आए और आके खुद सॉरी करे।
बस वो ये बातें होती हैं, लेकिन दोनों तरफ के मामलात हैं। इतना मुझे मालूम है कि दो सिपाही थे, दोनों भाई थे और छुट्टी के ऊपर आए, मुझे उनकी रेजिमेंट्स का भी इलम है, लेकिन मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। लेकिन बहरहाल वो जो हो गया, और मेरा ख्याल है कि इदारों के माबैन तसादम नहीं होना चाहिए, मुझे इसके ऊपर बहुत तहफ्फुज है। मुझे
आखिरी सवाल आपसे है, मैं आई एम सो सॉरी क्योंकि मुझे ऊपर से इशारा हो रहा है कि टाइम से बाहर निकल गई हैं आप, टाइम स्लॉट से बाहर निकल गई हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए सर, हम फौरी तौर पे जो आदमी भी हमें कोई कहते हैं ना, बाज़ोकात सक्सेसफुल लोगों से सीखा जाता है, बाज़ोकात फेलियर वाले लोगों से भी बहुत कुछ लर्न किया जाता है। यूएसएसआर के टूटने के बाद चाइना ने उसको हजारों बार रिप्ले करके देखा कि वेयर वर दी शॉर्ट फॉल्स के यूएसएसआर टूटा था। आज इंडिया में अगर ये लफ्ज कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान में सुना है फकीरों की और चोरों की डकैतों की बड़ी तादाद ज्यादा हो गई है, उसका वो इंडिया ने बाकायदा प्रोग्राम्स वहां पे हो रहे हैं, एक मुल्क की जो हायर मैनेजमेंट है, चाहे वो हमारे आर्मी चीफ हैं, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, दे आर बेगिंग, दे आर आस्किंग फॉर मनी टू ऑल दीज कंट्रीज, एंड वी बड़े प्राउडली कहते हैं हाँ जी 5 अरब वो दे रहा है, 2 अरब वो दे रहा है, हमारे स्टेट बैंक के असासाजात में इजाफा होता चला जा रहा है। ऑन द अदर साइड इंडिया जो ये या दूसरे ममालिक जो लोग ये मीम जिसकी बना रहे हैं वो ये कहते हैं, और जिस मुल्क का लीडर ही हर वक्त मांगने के लिए निकला रहता है, एंड एवरी लीडर एवरी, और अब तो अगर आर्मी चीफ जिनका काम आर्मी का जिसका काम मुल्क का दिफा है, अगर उनके लीडर्स भी मांगने के लिए कासा पकड़ के निकले हुए, तो आपकी आम आवाम ने तो ये कुछ करना है, घर वाला घर नहीं, सानू किसी का डर नहीं, तो वो क्या करेंगे, या कत्लो गारत करेंगे और या वो बैगर्स की तादाद में इजाफा होगा।
ये जनरल बाजवा साहब के दौर में इकोनॉमिक कमेटी बनाई गई और उस वक्त पीटीआई हुकूमत ने उनको उसका सरबराह बनाया, जो कि मेरे ख्याल में गलत एक फैसला था, क्योंकि जिसका काम उसको साजे। और क्या किसी ने मिलिट्री कमेटी भी बनाई और उसके अंदर पता चला कि जी फौज की जगह किसी और सिविलियन को बिठा दिया, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल है कि ये एकदम ठीक नहीं था, और फिर यह आज तक उसको प्रैक्टिस हो रहा है। मैं नहीं समझता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये काम होना चाहिए कि वो जाके मुल्क मुल्क दौरा करें। लेकिन जहां तक इंडिया की बात है, तो वो वीडियो मौजूद है, अभी आपने भी देखी होगी, जहां वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जॉब्स कोई नहीं है, तो वो इसराइली आर्मी में भर्ती होने जा रहे हैं, और
9,000 लोगों को भर्ती करना है बाकायदा उसकी कंस्ट्रक्शन की,
1.5 लाख भारतीय रुपया उनकी तनख्वाह है, और फिर कम अज कम पाकिस्तान में यहाँ ये मांगने वाले खड़े हैं, तो क्या इंडिया भूल गया कि हाथ जोड़ के जब वो जाया करता था हर जगह, और ये तो इकोनॉमी उनकी
सर, ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं। एक बार देखिए आप, यू कैन नॉट कंपेयर आस, हमारा तो हमें तो आपस में लड़ा लड़ा के मार जोड़ा।
देखिए ये 20 साल छोड़ दें, 20 साल से पीछे चले जाएं इंडिया की,
मैं तो आज 20 साल में तो तरक्की कर ली ना, 20 साल में तो तरक्की,
ठीक है, हम भी एशियन इकोनॉमिक टाइगर थे जब थे, 74 तक थे, उसके बाद नहीं रहे, पॉलिसियां तब्दील होती हैं, मैं समझता हूं, लेकिन मैं इसको यहां से जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं ये गलत है, हमें बेहतर करना चाहिए, लेकिन कम अज कम
मतलब अगर पैसा लेके फिर रहे हैं, और आप देखिएगा पॉलिटिशियन तो आपके वही के वही, आज कराची की सूरत हाल देखें,
कनाडा है या बरतानिया है या अमेरिका है या कतर है, भारत का जो हाल हुआ है, आप राजनाथ सिंह का अभी इंटरव्यू देख लें जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हाँ हम मावरा या अदालत कत्ल करवाते हैं, दक्कन हाउस के कहने पे जो वजीर आजम का नाम लेके कहा उन्होंने, गार्डियन की स्टोरी
के बाद। देखिए सर, वो एक अलग बात है, मगर अगर आप तरक्की के लिहाज से देखें दे आर फोकस दे आर फोकस फॉर द कंट्री. मगर हमारी अभी रिसेंटली शादी हुई है, एक फौज का जनरल का नाम नहीं आया. हमारा तो कोई फंक्शन ही मुकम्मल नहीं होता जबकि वो लोग
जो इकोनॉमी वो पूरे उसके अंबानी की बीवी के गले का हार जो था वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बराबर था. तो मतलब बाकी तो क्या बात करें.
सैड है सर, वेरी सैड, वेरी सैड. मगर सर आपका तल्लुक, आपकी जो पहुंच है, मेरा आपसे बात करने का एक मकसद है. मुझे पता है कल को मुझे भी आपसे लड़ा देंगे कि भाई आरफा के प्रोग्राम में तुमने नहीं जाना, दे ब्लॉक मेरी मेनी पीपल, बट आई डोंट माइंड, अल्लाह सबसे बड़ा.
मैं सर मेरा वखरा आदमी हूं, आप बेफिक्र रहे.
मेरा सर कंसर्न सिर्फ इतना है कि बहुत बेइज्जती हो गई, मगर क्या अब हम उन लोगों में शुमार हो गए हैं कि अब बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा.
हमें अब फैसला करना चाहिए, अभी भी हम नहीं कर रहे फैसला. मैं समझ रहा था कि इंटरिम सेटअप जो है